दीदारे इश्कम की लास्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी इन 100 सब्सक्राइबर्स का थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और मेरे नॉवेल्स को पसंद किया। ऐसे ही मेरे नॉवेल्स को पसंद करते हुए मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर करें और साथ साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी जरूर शेयर किया करें। और अगर ऐसे ही आप मेरे साथ रहे तो बहुत जल्दी 100 सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएंगे। और मैं पूरी उम्मीद हूं कि मेरी एफर्ट्स के साथ आपका भरपूर सपोर्ट मुझे ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी रिक्वेस्ट के साथ दीदारे इश्कम की लास्ट एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। देखें, इस वक्त हम सिर्फ एक ही को बचा सकते हैं, या बेबी को या फिर मदर को। जल्दी से फैसला करें कि आप किसकी जिंदगी बचाना चाहते हैं। देखें, अगर आप बच्चे को बचाना चाहेंगे तो भी मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होगा, क्योंकि वो 7 मंथ प्रेग्नेंट है और 7 मंथ चाइल्ड कम ही आगे जिंदगी से सर्वाइव कर सकते हैं। डॉक्टर फाइल और पेन इसके हाथ में पकड़ाती बाहर जा चुकी थी, जबकि वो फाइल और पेन अपने हाथ में पकड़े बेयकीनी से इसे जाता हुआ देख रहा था। मेरी आरजू को कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं होने दूंगा इसे। अम्मी अम्मी, मेरी आरजू को कुछ नहीं होगा ना, वो इनका हाथ थाम कर किसी बच्चे की तरह पूछ रहा था। मैं अपनी आरजू को कुछ नहीं होने दूंगा। ऊन ने एक पल में पेपर के खाली डिब्बे में टिक लगा दी, जबकि नर्स इसके हाथ से पेपर खींच कर वापिस अंदर भाग चुकी थी। बाबा, मैंने ठीक किया ना, मैं इसको खो नहीं सकता, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसने अपने साथ खड़े बाबा से पूछा। 27 साल पहले मैंने भी यही फैसला किया था उन, लेकिन उस दिन ये मौजजा हुआ था कि तेरी माँ के साथ तू भी बच गया, बाबा ने प्यार से इसे पुचकारा, लेकिन वो बेयकीनी से इन्हें देख रहा था। आरजू मुझसे नाराज तो नहीं होगी ना, इसने कहा था, इसे ये बच्चा किसी भी हाल में चाहिए, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, वो मुझे तोहफा देना चाहती थी। अम्मी अम्मी, वो मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएगी ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, ऊन इनका हाथ थामे पूछ रहा था। शायद वो अपनी सारी नाराजगी, सारा गम, सारा दुख भूल चुका था। शायद वो इस वक्त ये भूल चुका था कि वो किसके सहारे बैठा है। शायद वो ये भूल चुका था वो किसके कंधे पर सर रख के रो रहा है। ना मेरी जान, मेरा बच्चा, आरजू तुझसे नाराज नहीं होगी, तू फिक्र ना कर, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंदर ऑपरेशन जारी था, जबकि हर गुजरते लम्हे के साथ इसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर है, कुछ ही देर में इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, नर्स इसे खुशखबरी सुनाई और वापस चली गई। जब ऊन ने बिना सोचे समझे जुबैदा को अपने गले लगाया था, जबकि बाकी डॉक्टरी कार्रवाई समीर और हारिस ने पूरी की थी, ऊन के इस मुश्किल वक्त में वो इसके सबसे बड़े सहारे बनकर इसके साथ खड़े हुए थे। शायद फैमिली होती ही इसीलिए है। ऊन ने कमरे में कदम रखा तो आरजू ने नजरें फेर ली। पुप्पो, कह दीजिए इन्हें कि ये यहाँ से चले जाएं, मुझे इनका चेहरा नहीं देखना, कैसे ये अपने बच्चे को मार सकते हैं, आज उनकी खुद साहता नफरत की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया, कह दे इनसे कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, भेजे इन्हें यहाँ से, मैं इनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। आरजू अपना सारा डर और खौफ भुलाए गुस्से से चिल्लाई थी। ऊन को यकीन नहीं आ रहा था कि आरजू इसे अपने ही बच्चे का कातिल कह रही थी। ऊन ने 2 कदम आगे बढ़कर इसे समझाना चाहा, जबकि आरजू की इस बात पर इसे बहुत गुस्सा आया था। ऊन बेटा, बाहर चलो, ये वक्त सही नहीं है, बाबा इसके करीब आकर कहने लगे। नहीं बाबा, देखें किस तरह से बात कर रही है वो मुझसे, वो मुझे मेरे बच्चे का कातिल कह रही है। ऊन गुस्से से इसकी तरफ बढ़ रहा था। बेटा प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो, इस वक्त वो इस कंडीशन में नहीं है कि तुम्हें या तुम्हारी किसी बात को समझ पाए, प्लीज चलो यहाँ से। वो इसका हाथ थाम कर इसे बाहर ले आए। ऊन ने आरजू से मिलने की और बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस वक्त बात नहीं सुन रही थी। इसका कहना था कि इसे ऊन से बात नहीं करनी, अगर वो अलग मकान में रहने की जिद ना करता तो ये सब कुछ ना होता। इसकी खुद साहता नफरत ने इनसे इनके बच्चे को दूर कर दिया था। क्या नहीं सोचा था इन दोनों ने अपने होने वाले बच्चे के लिए, और क्या हो गया अगर इस दिन ऊन इसकी बात मानकर इसे जुबैदा के पास छोड़ जाता तो शायद आज इसका बच्चा बिल्कुल ठीक होता। इसे ऊन से कोई शिकायत नहीं होती, वो जानती थी कि ऊन को अपना बच्चा खोने का बहुत दुख है, वो भी इसके गम में बराबर शरीक है, लेकिन वो इसको इस तरह से माफ नहीं कर सकती थी। अगर वो उनको इस तरह से माफ कर देती तो वो कभी रिश्तों की अहमियत ना समझ सकता। आरजू के पास ऊन को समझाने का ये आखिरी मौका था। वो जानती थी कि इसे आरजू की जरूरत है, लेकिन फिर भी वो इसे अकेला छोड़ चुकी थी ताकि वो इन रिश्तों के बारे में सोचे, इनको समझने की कोशिश करे। और जब से आरजू से दूर हुआ था वो घर वालों के करीब होता जा रहा था, शायद वो इनकी अहमियत को समझने लगा था। वरना वो आरजू से वापस घर चलने का कह चुका था, लेकिन वो इसे साफ इनकार कर चुकी थी। उसने कहा था कि वो वापस उसके साथ नहीं जाना चाहती और ना ही ऊन के साथ रहना चाहती है। इन्हें घर आए एक हफ्ता हो चुका था, तब से ऊन दूसरे कमरे में सो रहा था। घर में सभी लोग ऊन का बहुत ख्याल रख रहे थे। सबका कहना था कि आरजू इसे माफ कर देगी। ऊन सुबह तैयार होकर पुलिस स्टेशन जाने लगा तो जुबैदा ने जबरदस्ती नाश्ते के लिए रोक लिया। उसने बहुत इनकार करने की कोशिश की, लेकिन जुबैदा ने इसकी एक बात ना सुनी तो मजबूरन इसे नाश्ते के लिए बैठना पड़ा। बेटा, वैसे मैंने तुम्हारे लिए पराठा बनाया है, लेकिन अगर तुम कुछ और खाना चाहो तो मैं अभी बना देती हूँ, जुबैदा ने बहुत मोहब्बत से कहा। नहीं, यही ठीक है, मैं खा लूंगा, थैंक्स, ऊन ने मरवतन कहा। तो पास बैठे बाबा मुस्कुराए। माँ को कौन थैंक्स बोलता है, उन्होंने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। आप चुप रहें, मेरे मासूम बच्चे को सुकून से नाश्ता करने दें, सुबह सुबह इसके पीछे मत पड़ जाइएगा, जुबैदा ने आंखें दिखाते हुए कहा। तो बाबा मुस्कुरा दिए। मतलब बेटे के सामने शोहर की कोई अहमियत ही नहीं, उन्होंने ताया अबू को देखकर कहा तो वो भी मुस्कुराने लगे। बाबा, आपको तो अपनी पड़ी है, आज तो अम्मी ने मेरे लिए भी पराठा नहीं बनाया, समीर ने बैठते हुए शिकायत की। ऊन अपने नाश्ते में मसरूफ अपनी हंसी दबा गया। अरे नहीं नहीं, अभी बनाती हूँ, तू मुंह मत बना, जुबैदा ने उठकर मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, रहने दे, मैं आपके लाडले के साथ शेयर कर लूंगा, समीर ने कहते हुए ऊन की प्लेट से बिना पूछने की जहमत किए खाना शुरू कर दिया। लेकिन ऊन को इसकी ये हरकत बुरी ना लगी थी। इन दोनों में कभी ऐसा रिश्ता ना रहा कि वो एक ही प्लेट से खाते, लेकिन आज ऊन को पहली बार एहसास हुआ था कि वो इसका भाई है। समीर की इस हरकत पर वो भी मुस्कुराते हुए अपने नाश्ते में मसरूफ हो गया। समीर, मुझे जरा मेरे दोस्त के घर छोड़ दो, बहुत दिन हो गए चक्कर नहीं लगाया, बाबा ने समीर को मुहातिब किया। बाबा, मेरी गाड़ी तो वर्कशॉप में है, समीर ने आखिरी नवाला लेते हुए कहा। मैं छोड़ दूं, ऊन ने उठते हुए पूछा। हाँ तो तुम ही छोड़ोगे, और कौन छोड़ेगा, सुना नहीं जनाब की गाड़ी बीमार है, अस्पताल में पड़ी है, बाबा ने नॉर्मल अंदाज में कहा। तो वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी निकालने चला गया, जबकि समीर ने एक नजर जुबैदा की तरफ देखा जो आरजू के कहने पर ये सब कुछ कर रहे थे। उन्हें आरजू ठीक लगी थी, ऊन को एक फैमिली देने के लिए, एक फैमिली का एतबार देने के लिए ये सब कुछ जरूरी था। ऊन का रास्ता दूसरी तरफ था, लेकिन वो सिर्फ इनको छोड़ने के लिए इस साइड आया था। गाड़ी में ऊन ने 2-3 बार आरजू को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया तो फिर मैसेज कर दिया, प्लीज खाना खा लेना। बाबा इसकी सारी हरकतें बहुत गौर से देख रहे थे। फोन नहीं उठा रही, बाबा ने आराम से पूछा। तो ऊन ने इन्हें देखा, फिर नफी में सर हिलाया। इसे वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाबा ने मुस्कुरा कर कहा। इसकी नाराजगी खत्म नहीं हो रही, तुम्हारी माँ भी ऐसे ही नाराज हुई थी, बाबा ने कहा। तो ऊन ने इन्हें देखा। मैं और बच्चे नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ का कहना था कि तुम इसके नसीब की औलाद हो। मैंने इसे समझाया कि हमारे पहले ही 4 बच्चे हैं, संभालना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं मानी तो मैं इससे नाराज हो गया। लेकिन तुम्हारी माँ के लिए मेरी नाराजगी से ज्यादा तुम अहम थे, इसे तुम्हारी बहुत फिक्र थी। मैं अखराजात से घबरा गया था, मैं 4 बच्चों को बहुत मुश्किल से पाल रहा था, मैंने इसकी बात नहीं मानी तो वो जिद पर अड़ गई, फिर तुम्हारी पैदाइश में तंग दस्ती की वजह से इसकी तबीयत मजीद बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि माँ या बच्चे में से बस किसी एक को ही बचाया जा सकता है। जुबैदा ने कहा कि इसका बच्चा बचा लिया जाए, लेकिन अगर जुबैदा मर जाती तो मैं 5 बच्चे कैसे संभालता हूँ। मैं इसे अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए बचाना चाहता था, मैं एक बच्चे के लिए अपने 4 बच्चों की जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता था, मुझे तुम्हारे साथ साथ अपने बच्चों को भी पालना था, मैं मजबूर था। जब ऑपरेशन हुआ तो अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को बचा लिया, मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हाँ लेकिन तुम्हारी माँ से ज्यादा नहीं, बाबा फिर से मुस्कुराए थे। ऊन ने एक नजर उठाकर इनकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका गया। समीर बचपन से ही बहुत डरपोक था, अक्सर नींद में जाग जाता था, फिर कई कई दिन इस डर में रहता। मैंने डॉक्टर से मशवरा लिया तो उन्होंने कहा कि वो डरपोक बच्चों में शामिल होता है, इसे हर वक्त माँ बाप की जरूरत है, इसका डर इसे एक कमजोर इंसान बना सकता है जिसकी वजह से इसकी आगे की जिंदगी मुश्किल हो सकती है। यही वजह थी कि मैंने और जुबैदा ने तुम्हें तुम्हारे दादा के हवाले कर दिया और हम समीर पर ध्यान देने लगे। वो तुम्हें बहुत चाहते थे, हर वक्त तुम्हें अपने करीब रखते थे, जहां जाते तुम्हें अपने साथ लेकर जाते थे। बाबा ने मुस्कुराते हुए बताया, इस बात में कोई शक नहीं था कि इसके दादा इससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इनके होते हुए हमें कोई टेंशन नहीं थी तुम्हारी, वो तुम्हारे बहुत करीब थे और हमें पता भी नहीं चला कि कब हम तुमसे इतने दूर हो गए। बाबा के चेहरे की उदासी उनको शर्मिंदा कर गई थी। कोई भी वालदेन औलाद को जानबूझकर मारने की कोशिश नहीं करते और तुम हमें कातिल कहते हो, वो इसे मजीद शर्मिंदा कर गए। तुम पांचों हमारे बच्चे हो, तुम सब हमारे लिए एक बराबर हो, खास करके तुम जो सबसे छोटे थे, पर हमेशा वो सब कुछ करते जिससे मुझे गुस्सा आता है। तुम अपनी गलतियों की वजह से मार खाते थे, बहुत अच्छे और शरीफ बच्चे नहीं बल्कि बहुत शरारती बच्चे थे। क्या जाता अगर मेरी बात मानकर खानदानी काम संभाल लेते, यूनिफॉर्म पहनकर बैठे हो। बाबा ने इसकी यूनिफॉर्म पर चोट करते हुए कहा तो ऊन मुस्कुराया। अब गाड़ी वापस लेकर चलो, मेरे दोस्त का घर पीछे छूट गया है, बाबा ने कहा तो ऊन ने पीछे देखा। वाकई घर बहुत पीछे छूट चुका था, शायद इनकी बातों में इसे समझ न आया। आपने बताया क्यों नहीं, वो मुंह बसोर कर बोला, क्योंकि और बहुत कुछ बताना था, ये ज्यादा जरूरी था। बाबा मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरे तो वो भी इनके पीछे गाड़ी से उतर कर इनके सामने आया और जल्दी से इनके सीने से लग गया। आई एम सॉरी बाबा, मैंने शायद बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन सबके लिए सॉरी, मुझे पता है आप मुझे माफ कर देंगे, वो इनके सीने से लगा किसी बच्चे की तरह बोल रहा था। बाबा ने इसे खुद में बीचा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ऊन, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे लिए बहुत अहम हो, वो इसे अपने सीने से लगाए हुए कह रहे थे तो वो खुलकर मुस्कुराया। माफी मांगना इतना भी मुश्किल नहीं था जितना वो सोच रहा था। वो शाम को घर आया तो जुबैदा किचन में कुछ कर रही थी। वो इनके पास किचन में ही आ गया और उन्हें देखने लगा। क्या हुआ ऊन, भूख लगी है, जुबैदा ने फिक्रमंदी से पूछा तो ऊन ने हाँ में गर्दन हिलाई। मेरा बच्चा, मैं अभी रोटी डालती हूँ, वो जल्दी से आटा निकालने लगी। मैं खीर खाऊंगा, इसने फरमाइश की। हाँ मेरी जान, मैं अभी बनाती हूँ, जुबैदा ने खुशी से कहा और इसके लिए खीर बनाने का सामान निकालने लगी। मैं आपको बहुत तंग करता हूँ, आप मुझसे नाराज क्यों नहीं होती, इसके अचानक सवाल पर जुबैदा ने इसकी तरफ देखा। अगर मैं तुमसे नाराज हो जाती तो तुम मुझसे और ज्यादा नाराज हो जाते, तुम तो पहले ही मुझसे नाराज रहते हो। तुम तंग नहीं करते, तुम जब गुस्सा होते हो तो हमसे दूर चले जाते हो और फिर महीनों महीनों वापस लौट कर नहीं आते थे, मैं तुम्हारा इंतजार करती रह जाती, जुबैदा ने अपनी आंखों को साफ करते हुए कहा। थप्पड़ क्यों नहीं लगाती थी मुझे, लगा देती तो सारी अकल ठिकाने आ जाती। आज उसका अंदाज बहुत अलग था, बाबा ने आते ही इन्हें सुबह की सारी रुदात सुनाई थी। तेरी शक्ल बहुत मासूम थी, मारने का दिल नहीं करता था, कभी थप्पड़ नहीं लगाया तुझे, और तेरे दादा तो वैसे भी तुझे किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे, जुबैदा ने मुस्कुरा कर कहा। इसकी और दादा की मोहब्बत तो इस घर में मिसाली थी, हर कोई इनकी मोहब्बत से वाकिफ था। जल्दी बनाइए ना, मुझे भूख लगी है, ऊन ने कहा तो जुबैदा ने जानते हुए भी अभी बहुत वक्त लगेगा खीर देखने लगी। बस थोड़ी देर में बन जाएगी, जुबैदा ने मुस्कुरा कर इसे दिलासा दिया। तुम ऐसा करो, फ्रेश हो जाओ, तब तक तुम्हारी खीर तैयार हो जाएगी। हाँ ठीक है, आप तैयार करें, तब तक मैं नहा के आता हूँ, और समीर को मत दिखाइएगा कि वो भूखा सारी चट कर जाएगा, ये सारी मेरी है, मैं अकेला खाऊंगा। मैं आपसे माफी मांगता माँ, लेकिन सुबह बाबा ने कहा था कि माँ को भी कोई थैंक यू बोलता है, तो फिर मैंने सोचा माँ को तो कोई सॉरी भी नहीं बोलता, और जाने से पहले बड़े प्यार से इनका गाल चूम कर गया। आरजू की कही हर बात सच साबित हुई थी। ऊन इन लोगों से दूर हुआ था तो वो लोग भी ऊन से दूर होने लगे, वो इसे एक फैमिली का इत्माद नहीं देते थे जिन पर वो भरोसा करे, लेकिन आरजू की बात मानकर वो सब ऊन के करीब आने लगे थे और ऊन भी इनके बहुत करीब आ चुका था। सब कुछ ठीक हो रहा था, इन सब से मिलकर हंसी खुशी रहने लगा था, आहिस्ता आहिस्ता वो सबको समझ चुका था, वो सब भी इसका ख्याल रखने लगे थे और वो भी इनके साथ खुश था। उमर भी अब काफी मुतमईन था, वो भी इसकी अकल ठिकाने लगने पर बहुत खुश था, लेकिन आरजू अब भी इससे नाराज थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आरजू को कैसे मनाए, वो अब भी अलग कमरे में सोता था। इनका कहना था कि जब तक आरजू खुद इसे कमरे में नहीं बुलाएगी वो कमरे में नहीं जाएगा। और आरजू इससे कुछ नहीं कहती थी, ना वो इससे बात करती थी और ना ही इसके अंदाज से वो नाराज लग रही थी। घर में सभी इसकी बेचैनी से वाकिफ थे, लेकिन बाबा का कहना था ये इन दोनों का पर्सनल मैटर है जिसमें कोई नहीं बोलेगा। उनको एहसास हो रहा था कि फैमिली क्या है, इस फैमिली की अहमियत क्या है। शाम की चाय पर वो सबके साथ बैठकर बातें करता, ताया अब्बू और अब्बू के बचपन के किस्से सुनता, ताई अम्मी और अम्मी की बातें, हारिस और समीर की शरारतें, बड़े भाइयों की डांट, बहनों की फरमाइशें। वो कितने सालों से ये सब कुछ मिस कर रहा था। अब वो अक्सर शाम को घर जल्दी आने लगा, किसी ने नहीं कहा था इसे, लेकिन फिर भी वो अपना वक्त इन लोगों के साथ गुजारने लगा था। उमर को जब पता चला कि वो अपने घर वालों के साथ खुश है, वो शाम के बाद अक्सर ही इसकी ड्यूटी भी संभाल लेता। हारिस और समीर इसके साथ भी शरारते करने लगे, कहने को वो इसके बड़े भाई थे, लेकिन अम्मी और बाबा हमेशा इन दोनों को डांटते रहते। कितने प्यारे थे इसके सब घर वाले और वो इनसे दूर था। आज वो ये सब कुछ खोने की वजह से पछता रहा था। इन खुद साख्ता फासलों की वजह से इसने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन अब और नहीं। ऊन जाओ, बिजली का बिल भरकर आओ, भैया ने इसे मुखातिब किया। मैं तो कभी भी बिजली का बिल भरने नहीं गया, वहां कौन करता था। ऊन समझ चुका था कि इनका इशारा दूसरे घर की तरफ था, वहां तो नौकर था। ऊन ने फौरन जवाब दिया, हमारे बाप ने यहाँ कोई नौकर नहीं रखा, चल बेटा फटाफट से जाकर बिल भर के आ। मगर भैया मुझे तो नहीं आता, ऊन ने परेशानी से कहा। बेटा 2 महीने भरेगा तो 3रे महीने खुद ही आ जाएगा, भैया ने मुस्कुराते हुए एक जिम्मेदारी दी थी। ऊन ने एक नजर बिल की तरफ देखा और फिर दरवाजे के पीछे नीला दुपट्टा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल के आई। इसकी बीवी इससे बात करे या ना करे, लेकिन छुप छुप कर दीदार जरूर करती थी। वो मुस्कुराते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। वो पूरे 2 घंटे हवार होने के बाद बिजली का बिल जमा करवा के आया था। आओ ऊन, हम महरिश की शादी की बात कर रहे हैं, अनीसा ने इसे आते देखकर कहा। वो लोग काफी वक्त से महरिश की बात चला रहे थे, फिर कुछ दिन पहले रिश्ता लेकर बकायदा आए। मुझे ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा, अपने लोग हैं, बेटी खुश रहेगी, मुझे तो हसन बहुत अच्छा लगता है, ताया ने इसे मुखातिब किया। मुझे लगता है हमें हाँ कर देनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुम एक बार छानबीन कर लो, आखिर बड़े भाई हो तुम लोग, और अगर तुम लोगों को मुनासिब लगे तो हम हाँ कर देंगे, ताया अबू सबको मुखातिब करते हुए बोले। हाँ हसन है तो बहुत अच्छा, लेकिन एक बार ठीक से छानबीन करके ही हाँ करेंगे, समीर ने कहा। ऊन बेटा ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ताया अबू ने उम्मीद भरी नजरों से इसकी तरफ देखा तो वो इन्हें देखकर मुस्कुराया। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, ऊन इनकी उम्मीद पर पूरा उतरते हुए बोला। महरिश की शादी की सारी डेकोरेशन मैं और हारिस करेंगे, समीर ने कहा। कोई जरूरत नहीं है तुम दोनों को कुछ भी करने की, जरिश की शादी पर कितना कबाड़ा किया था तुमने, इसको डेकोरेशन कौन बोलता है, ओल्ड फैशन, कुछ तो यूनिक करो। ऊन तुम हमारी तुहीन कर रहे हो, समीर को सदमा हुआ था। बट एवर, ऊन ने इसे इग्नोर करते हुए फिर से अपनी बात शुरू की। ये सब कुछ मैं और उमर संभाल लेंगे, तुम अपनी डेकोरेशन अपने पास रखो, महरिश की शादी की सारी तैयारी मैं करूंगा, इसने दरवाजे से आती महरिश को देखकर कहा तो वो शर्मा के वापिस अंदर चली गई। वो घर आया तो आरजू सबके साथ बैठी थी, वो भी साथ आकर बैठ गया। आरजू ने इससे कोई बात ना की, बल्कि वो तो हानिया के साथ बातों में मसरूफ हो गई। बाबा इससे बातें करने लगे जबकि इसका सारा ध्यान आरजू पे था। इनका अलग अलग कमरे में सोना घर में किसी से भी छुपा ना था। घर में सबको पता था आरजू और ऊन में अब तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ। 1 महीना गुजर चुका था, अब सब कुछ ठीक होने लगा था सिवाय आरजू और ऊन के। अम्मी ने आज इन दोनों से बात करने के बारे में सोचा तो बाबा ने मना कर दिया। इनका कहना था कि तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं, वो इन दोनों का मसला है, खुद ही हैंडल कर लेंगे। वो रात 12:30 बजे के करीब घर वापिस आया। ड्यूटी की वजह से आज वो बहुत लेट हो गया था। इसका इरादा चुपचाप कमरे में जाकर सोने का था। वो दबे पांव अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब अचानक लाइट्स ऑन हुई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, सब ऊंची आवाज में गाते हुए एक कमरे से बाहर निकले। हैप्पी बर्थडे डियर ऊन, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबके साथ आरजू हाथ में केक लिए इसके करीब आई। उनको याद तक नहीं था कि आज इसका बर्थडे है, लेकिन इसकी फैमिली को याद था। शायद ही इससे पहले ऊन ने अपनी फैमिली के साथ इस तरह की कोई खुशी मनाई थी। सबसे पहले जुबैदा ने इसका चेहरा चूमकर इसे मुबारकबाद दी, फिर इसे गले लगा लिया। आरजू ने फिलहाल सिर्फ इसे हैप्पी बर्थडे कहा था, जबकि इसकी उम्मीद के बरकस उमर भी यही था। जल्दी काट केक, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसके केक के चक्कर में मैंने डिनर भी नहीं किया। समीर ने छुरी इसके हाथ में पकड़ते हुए जबरदस्ती केक कटवाना चाहा, जबकि ऊन मुकम्मल नखरे दिखाने के मूड में था। फिर आखिरकार इसने समीर की दुहाई सुनते हुए केक काटा और सबको केक खिलाने के बाद एक छोटा सा पीस इसके मुंह में डाला। अबे केक खिलाने की भी रिश्वत लेगा क्या, वो जबरदस्ती इसके हाथ से खाते हुए बोला, जबकि इनकी हरकतों पर सब घर वालों के कहके बुलंद हो रहे थे। चलो बच्चा पार्टी, अब सब लोग सो जाओ, सुबह हम ऊन की बर्थडे पार्टी करेंगे। बाबा ने सबको अपने कमरे की तरफ भेजा तो ऊन दूसरे कमरे की तरफ जाने लगा। ऊन जी, हमारा कमरा इस तरफ है, आरजू ने इसे पीछे से आवाज देकर पुकारा, जबकि बाबा अम्मी के कंधे पर हाथ रखकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए मुस्कुराए। वो बिना कुछ बोले इसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल दिया। ऊन बिना कुछ बोले बेड पर लेट गया। इसे लग रहा था कि आरजू अब भी इससे नाराज है। आप मुझसे नाराज हैं, आरजू इसके करीब बैठकर पूछने लगी। मैं नहीं तो मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा, नाराज तो तुम हो मुझसे, इतने दिनों से कितनी कोशिश कर चुका हूँ पर तुम मानती ही नहीं। आरजू के इस तरह से अपने करीब आने पर वो बैठ गया। आपको क्या लगा ऊन जी मैं आपसे नाराज हूँ? मैं आपसे नाराज नहीं थी, मैं बस आपको बताना चाहती थी कि ये लोग आपके अपने हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे दूरी इन्हें तकलीफ पहुंचा रही है। मैं आपसे इसलिए बात नहीं कर रही थी ताकि इन सब से बातें कर सकें। मैं जानती थी कि आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे नाराज हो जाती हूँ। मेरी नाराजगी की वजह से आप ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे, आप इसी घर में रहेंगे। मैं जानती थी कि आप उप्पो की मजबूरी को समझेंगे, ये सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं ऊन जी, आपने देखा ना, आरजू ने यकीन से कहा तो वो मुस्कुरा दिया। हाँ आरजू, ये सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे कितना चाहती हो। तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, अब तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। वो इसके चेहरा अपने करीब करते हुए बोला तो वो नजरें झुका गई। नहीं आरजू, अब ये नजरें झुकाने का कोई फायदा नहीं, आज तो तुम्हें बताना होगा कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। ऊन बाजिद हुआ तो वो इसके सीने में सर छुपा गई। मेरे खुदसाहता बनाए गए फासलों की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया, अब मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, आज भी तुम ना बुलाती तो मैं मर जाता। ऊन ने इसे मजीद हुद में समेटते हुए शिद्दत से कहा तो आरजू ने अपना हाथ इसके लबों पर रख दिया। आप जब इस तरह से बातें करते हैं तो मेरा दिल करता है कि मैं आपका कान पकड़ के बाबा के पास ले जाऊं और बहुत सारी डांट पड़वाऊं, आरजू ने कहा तो वो मुस्कुराया। सुबह ले जाना, इस वक्त मुझे खुद से प्यार करने दो, बहुत तड़पा हूं तुम्हारे बगैर, वो इसके लबों पर अपने होंठ रखते हुए बोला तो आरजू ने शर्मा कर अपना आप इसको सौंप दिया। आई लव यू आरजू, मुझसे कभी दूर मत जाना, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। इसका नाजुक वजूद खुद में समेटे हुए वो इसे किसी और दुनिया में ले जाने लगा और आरजू इसकी शिद्दत में पिघलती सिर्फ इसी की होकर रह गई। 2 साल बाद अपने चेहरे पर नरम लम्स महसूस करते ही ऊन की आंखें खुल गई। इसने बड़ी मोहब्बत से अपनी छोटी सी परी को देखा जिसे आरजू अभी बेड पर छोड़कर गई थी। ऊन को जागते देखकर वो अपनी गोल गोल आंखें मटकाती खिलखिलाकर मुस्कुराई। ऊन ने करीब से दूध की बोतल उठाई और फिर इसे उठाकर अपनी गोद में रखा, क्योंकि इसकी गुड़िया के नाश्ते का वक्त हो चुका था। ऊन कभी इसके चेहरे को चूमता तो कभी नन्हे हाथों को। ऊन को खुद भी पता ना चला कि ये छोटी सी जान कब इसकी जान बन गई। अगले महीने इसका पहला बर्थडे था जिसे वो बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करने वाला था। ऊन फ्रेश होकर अपनी परी को उठाकर नीचे आया तो समीर का बेटा जिसने अभी अभी चलना शुरू किया था, जुबैदा का दुपट्टा था में इसके पीछे चल रहा था। इसने अपनी परी को समीर की गोद में रखा और अहल समीर का बेटा उठाकर अपने करीब किया, जबकि इसकी ये हरकत इसकी नन्ही परी को पसंद न आई थी जिस पर वो अपने मुंह के डिजाइन बनाती रोना शुरू कर चुकी थी। ओ यार ऊन, मेहरबानी करो, तुम अपनी लाडली को संभालो, मैं अपने बेटे को संभाल लूंगा, समीर ने इसे रोते हुए देखकर कहा। कभी कभी तुम्हारी बेटी को देखकर सोचता हूँ ये तुम्हारी बीवी को तुम्हारे पास नहीं आने देती तो तुम्हारी दूसरी औलाद को क्या आने देगी। ऊन के उठाते ही वो चुप हो गई थी, जबकि इसकी बात सुनकर आरजू सोच में पड़ गई थी। परी सोई तो ऊन ने इसे उठाकर बेबी कॉट में रखा। अगले महीने इसका पहला बर्थडे था जिसे वो बहुत धूमधाम से मनाना चाहता था। ऊन जी, आरजू की पुकार पर लैपटॉप में मसरूफ हो इसकी तरफ मतवजा हुआ। जी ऊन जी की, वो इसके करीब हुआ। परी आपसे बहुत प्यार करती है, अगर हमारा कोई और बेबी हुआ तो मुझे अकेले पालना पड़ेगा, आरजू ने मासूमियत से पूछा। ऊन खुलकर मुस्कुराया। क्यों, वो हम दोनों का बच्चा होगा, हम दोनों इसे पालेंगे, वो इसे मजीद खुद से करीब करते हुए बोला। वैसे तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है, कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं, ऊन ने शरारत से कहा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि आपकी लाडली आपको मेरे साथ शेयर नहीं करती तो हमारे दूसरे बच्चे के साथ क्या करेगी, और आप भी तो इससे इतना प्यार करते हैं कि शायद ही इतना प्यार हमारे दूसरे बच्चे को दे सकें। तुम इतना मत सोचा करो, फिक्र मत करो, मैं अपने 20 बच्चों को एक साथ एक जैसा प्यार दे सकता हूँ और इसके बाद भी तुम्हारे लिए मजीद प्यार का अरेंजमेंट कर सकता हूँ, ऊन शरारत से कहते हुए इसके चेहरे पर झुका और एक हाथ से लाइट ऑफ कर दी। 20 बच्चे, अंधेरे में इसे आरजू की सहमी हुई आवाज सुनाई दी, जिसके बाद ऊन का जिंदगी से भरपूर कहका बेसाख्ता था। इसी के साथ दीदारे इश्कम का अहतमाम होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये नावल बहुत पसंद आया होगा। नावल पसंद आने पर इस नावल को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एपिसोड आपको इजीली मिल सके।